أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده
اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ظاہر تھے اور ہیں، और आज से 1400 बरस सालों से भी ज्यादा अरसा पहले, 1400 बरस से भी ज्यादा अरसा पहले पुराने करीम में मिलातों का जिक्र मौजूद है और उनके नतज का भी जिक्र मौजूद है। मसलन जो नए इरादे जाहिर किए गए हैं वो ये हैं कि इनको जबरदस्ती नमाज व जमात से रोक दिया जाए, इनकी मस्जिदें मुनहदिम कर दी जाए और फिर उलमा की सरकर्दगी में तमाम उनके चेले और हम नवाज जुलूस की शक्ल में इनको लेकर जाएं मकबर की तरफ और वहां इनको संसार किया जाए, तब हमारे दिल ठंडे होंगे। अजीब बात है कि अगर संसारी करना है तो फिर मस्जिदें तोड़ने का गुनाह क्यों लेते हो और नमाजों से रोकने का गुनाह क्यों सर पे लेते हो? जब अकलें उखड़ जाती हैं रास्तों से तो फिर कोई भी उनकी सिमत निगाह करती भटकती रहती है। बहरहाल इससे गरज कोई नहीं। जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, जमात अहमदिया हर कुर्बानी के लिए तैयार थी और है और रहेगी, पर अल्लाह ताला के फजल के साथ खुदा की राह में जान देते हुए अहमदी उस तो में रबिल काबा का नारा लगाएंगे कि रब काबा की कसम में कामयाब। लेकिन इन लोगों का क्या हाल है और क्या होगा उनके मुतल्लिक मैंने कुरान करीम की वो आयात तिलावत की हैं जिनमें नमाज से रोकने का जिक्र फरमाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने देखा नहीं एक ऐसे शख्स को, यानी हर उस शख्स को जो नमाज से रोकता है अब्दन इजा सल्ला, खुदा के बंदे को जब वो नमाज के लिए खड़ा होने लगता है। अब्दन में नकेरा इस्तेमाल किया गया है और अल अब्द नहीं फरमाया, यानी खुदा के खास बंदे को यानी हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अब्द की शक्ल में जाहिर नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए इसमें एक हिकमत है। लेकिन उसके बावजूद अव्वलीन तौर पर आम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जिक्र है क्योंकि तमाम इबादतों का नुक्ता मेराज आप हैं, तमाम इबादतें आपसे फूटती हैं और बनी आलम बनो इंसान में फैलती हैं। इसलिए अब्दन में जिक्र भी फरमा दिया गया और इस लफ्ज को आम भी रखा गया। जिक्र इस तरह फरमाया कि नकरा में एक ये भी माने पाए जाते हैं कि अगर किसी बहुत अजीम शान वजूद का जिक्र करना हो तो उसको अल के लफ्ज से मखसूस करने की बजाय नकरा की रहने लगे, मतलब रसूलन कह दिया जाए तो यह भी मुराद होगी कि बहुत ही बड़ा रसूल, इतना अजीम शान रसूल कि वो अल का मुताज ही नहीं है, है ही वही मुराद। इन मानों में अव्वल ही वो सामने आता है। तो अब्दन जब फरमाया गया कि अब्दन इज़ा सल्ला तो मुराद है एक अजीम शान खुदा का बंदा है, उससे बड़ी इबादत करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा है कि जब अब्द का लफ्ज आए तो उसके सिवा जहन में और कोई वजूद ही नहीं आता खुदा की नस्बत के साथ, तो इसलिए अल की जरूरत ही कोई नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल और आखिर इसमें जाहिर वाहिर है। तो ये माने बने कि वो कौन उस बदबख्त को जो देखो जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब्द कामिल को इबादत से रोकता है जब वो खड़ा होता है, और दूसरे अब्दन के जरिए इसको आम भी कर दिया गया और हैरत अंगेज रुसत दे दी इस लफ्ज में। यह नहीं फरमाया कि मोमिन को जो रोकता है इबादत से, यह नहीं फरमाया कि जो मुस्लिम को इबादत से रोकता है, यह नहीं फरमाया कि जो इब्राहिम की नस्ल वालों को इबादत से रोकता है, यह नहीं फरमाया कि जो ज़रदश्ती को इबादत से रोकता है या कन्फ्यूशियस की बुनियादों को इबादत से रोकता है। फरमाया मेरे हर बंदा मेरी इबादत कहां करता है ना उसका कोई मतलब, और वो सबसे बड़ा जालिम इंसान है जो मेरे बंदे और मेरे दरमियान हायर होने की कोशिश करता है उस वक्त जबकि वो मुझसे ताल्लुक कायम करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए कितना अजीम शान कलाम है कि एक खास अंदाजे बयान के जरिए मफहूम को एक नुक्ते पर भी इकट्ठा कर देता है और फिर इस तरह बखेर देता है कि तमाम बनीन और इंसान इसमें शामिल हो जाते हैं, हर मजहब व मिल्लत का इंसान इसमें शामिल हो जाता है। ना हिंदू इससे बाहर रहता है, न सिख इससे बाहर रहता है, ना ईसाई, ना यहूदी, न जरदश्ती, न बुद्ध, तमाम बड़ी नौ इंसान की इबादत की हिफाजत करता है। इसमें भी दो मानी है, अरायत इंकाना अल खुदा और अमर अबित तकवा, कि वो ये क्यों नहीं देखता जालिम कि अगर ये जिसको वो रोक रहा है हदायत पर हुआ और तकवा पर कायम हुआ तो फिर इस रोकने वाले का क्या बनेगा। और दूसरा माना ये है कि काश उसको ये समझ आ जाती कि वो हदायत पर रहता और तकवा से काम लेता और उन मामलात में दखल न देता जिनमें दखल देना उसका काम नहीं, क्योंकि बंदे और खुदा के मामले में दखल देने का किसी इंसान को हक अदा नहीं किया गया। अगली आयत के भी इसी तरह दो मानी बनेंगे, अरायत इन कज़ब व तवल्ला, कि तुम ये समझ रहे हो कि ये हम इसलिए रोकने का हक रखते हैं कि कज़ब व तवल्ला ये झूठा है और फिर गया है दीन से, इसलिए हमें हक है कि हम मुदाखलत करें और इबादत से रोक दें। अल्लाह ताला फरमाता है अलम यालम बे अन्नल्लाह यरा, ए बेवकूफो ए अक्ल के अंधो, तुम क्या खुदा को भी अंधा समझ रहे हो जिसकी वो इबादत कर रहा है, अगर ये फिरा हुआ है दीन से झूठा है तो उसको भी नजर नहीं आ रहा कि ये झूठी इबादत कर रहा है और सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है। कैसी उमदगी के साथ इस दलील को तोड़ा गया है, कुलियतन पारा पारा कर दिया गया है इस दलील कि चूंकि हम समझते हैं कि ये झूठा है, हम समझते हैं कि अपने दीन से फिरा हुआ है इसलिए इसको इबादत का हक नहीं। दूसरे माने ये हैं, अरायत इनका जब अवतवल्ला, उनको ये खौफ नहीं आता कि अगर उन वो खुद झूठे हैं, खुद हक की मुखालफत करने वाले और सच्चों की तकजीब करने वाले हैं और खुद दीन से फिर चुके हैं तो फिर उनका क्या बनेगा, फिर वो एक ऐसे वजूद की मुखालफत कर रहे होंगे, एक ऐसे इबादत करने वाले को रोक रहे होंगे कि वो तो दीन हक पर कायम है, हदायत पर है और तक्वा पर है और ये कज़्ज़ाब है और ये दीन हक से फिरे हुए हैं। इतना अजीम शान कलाम है जो आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को भी ज़ाहिर करता है और शर्फ़ इंसानियत को भी कायम करता है, साथ तमाम बड़ी नौ इंसान की अजमत को कायम करता है। और फिर फरमाया कल्ला लम यंतहि, खबरदार ऐसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है, हम मुतनब्बे करते हैं कि हम ऐसा नहीं बनते, क्योंकि जब बंदे और खुदा की राह में कोहल होता है तो दो बातें बड़ी बातें हैं, एक तो ये कि जब तक वो बंदा कमजोर ना हो जिसको इबादत से रोका जा रहा है, कोई इबादत से रोक ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा होता है, जब अगर ईसाई ताकतवर हो कहीं तो ईसाइयों को इबादत से भी रोका जाता है, हिंदू ताकतवर हो तो हिंदुओं को तो इबादत से रोका नहीं जाता, सिख ताकतवर हो तो उनको भी इबादत से नहीं रोका जाता। और इस वक्त जो पाकिस्तान ने कानून बना है वो सिर्फ एमपीओं के लिए है, किसी ताकतवर कौम के मुखालिफ वो कानून नहीं है। इसमें तो ये पहले से खबर दे दी गई थी कि कमजोर बंदों के खिलाफ कुछ होगा और होने वाला है, कल्ला लाइन यदि लम यंतहि, अगर वो बात नहीं आएगा तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि बंदा तो कमजोर है, क्योंकि अगर कमजोर ना होता तो तुम उसको इबादत से ना रोकते, लेकिन वो खुदा कमजोर नहीं है जिसकी इबादत के लिए खड़ा हो, जिसकी इबादत के हजूर इसकी पेशानी झुकती है, जिसके हजूर ये सजदा रेत को रेत होता है और अपनी गिरिया और दारी और बुका के साथ एक तूफान बर्पा कर देता है, जिसके कदमों में इसके आंसू बहते हैं, वो खुदा का नूर नहीं है। कल्ला अला इल्ला मन खलदा, सुन ले कि अगर वो बाज ना आया ला नस्फाम बिन नासियत, हम पकड़ेंगे इसकी पेशानी के बालों से, और जब हम पकड़ते हैं पेशानी को तो लाजमन वो पेशानी छुटी हुआ करती, नासियत खातियत काजिब, बड़ी झूठी पेशानी है, बड़ी खताकार पेशानी है। फल यद नादिया, लेकिन इससे पहले پہلے تو نافیہ کو کے متعلق کر چکا ہوں. نافیہ بن خاطیہ بن کاذبہ کا ذکر کیوں اس طرح آیا اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں. عبادت میں پیشانی کو ایک خاص مقام ہوا کرتا ہے. جب پیشانی خدا کے حضور زمین سے لگ جائے گا تو یہ بظاہر عجز کی انتہا لیکن حقیقت میں عبادت کا معراج ہے. سب سے زیادہ سربلندی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس کی پیشانی خدا کے حضور پوری سچائی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے رب العالی پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اس وقت خدا اپنے اعلیٰ رب کو یاد کرنا, کیونکہ جس کے تو حضور تم جھکے ہو وہ خود بہت بلند ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے, تمہیں ان بلندیوں سے ہمکنار کر دے گا جو بلند جن بلندیوں کا وہ خود مالک ہے. تو پیشانی عبادت کا مطلب ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب تم نے میرے عاجز بندوں کی پیشانی کو میری راہ میں جھکنے سے روکا تو ثابت کر دیا کہ تمہاری پیشانیاں جھوٹی ہیں, تمہارے سارے سجدے عبادت ہیں, وہ نشان جو ظاہری بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی بھی ایک حقیقت نہیں میری نظر میں. اس لیے ان جھوٹی پیشانیوں کو میں پکڑوں گا کیونکہ میرے بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان پیشانیوں کا ہٹا. خلیت و نادیا, اور یہاں یہ نہیں فرمایا اپنے مددگاروں کو بلاؤ, فرمایا اپنی مجالس کو بلاؤ. تم نے بھی تو بہت سی مجالس بنا رکھی ہیں, اب آواز دو اپنی مجالس کو کہ وہ تمہاری مدد کرے. سند الزوانیہ, ہم اپنی پولیس کو بلائیں اور پھر دیکھیں گے کہ مجالس جیتتی ہیں یا اللہ کے سپاہی جیتتے ہیں جب وہ اترا کرتے ہیں کسی کی مدد کو اور کسی کو ہلاک کرتے ہیں. کتنی حیرت انگیز صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت سے روکنے والوں کی نفسیات کو بھی ذکر فرمایا, عبادت کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا, یہ بھی بتا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عبادت مشتمل ہو جاتی ہے اور پھر منتشر ہو کر کسی ایک شخص کو حق نہیں دیتی عبادت کا, تمام بری نو انسان کو برابر حق دے دیتی, رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عیسائیوں کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ اگر کسی مسلمان نے ان کے گرجے کو بد نظر سے دیکھا, ان کی سلیبوں کو توڑا تو ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم کی اسی قسم کی آیات کا یہ تفصیلی مظاہرہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جو ایک بد ارادے پر قائم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ نہیں سمجھتے, کبھی ہاتھ دے گا جایا کرتے ہیں, اس لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کو ایسے معاملات میں دخل اندازی سے باز رکھے جو جس میں دخل اندازی کا خدا نے کسی انسان کو حق نہیں عطا فرمایا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمیشہ ان باتوں کے الٹ نتائج ظاہر کیے ہیں جو ہمارے خلاف دشمنوں نے مکر اور تدبیریں کی. احمدیت کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ دشمن کے ارادوں کے وہ نتائج ظاہر ہوئے اور ان کی تدابیر کے وہ نتائج ظاہر ہوئے جو مقصد تھا ان کا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے. چنانچہ آپ دیکھ لیں جب ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کے مال لوٹے ہیں جماعت کے اموال میں برکت دی, جب بھی نفوس ربا کیے ہیں ہمارے نفوس میں برکت دی, جب مسجدوں کو منظم کیا ہماری مسجدوں میں برکت ہوئی, جب ہم قرآن کریم جلائے احمدیوں کے پکڑ کر, حالانکہ وہی قرآن تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تھا, تو قرآن کی اشاعت میں بے شمار برکت ہوئی, جب انہوں نے تبلیغ پر پابندیاں لگائیں تو تبلیغ میں برکت ہوئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب 1974 میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس سے پہلے علماء اس بات کو کھوج چکے تھے. واقعہ یہ ہے کہ لوگ بھولے پن میں دھوکے میں آ کر احمدی ہو رہے ہیں جب تک ان پر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے وہ ہوتے رہیں گے, جب مسلمان کا لیبل ہم ہٹا دیں گے تو پھر دیکھنا کس طرح لوگ اٹھ جاتے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہوگی, کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ غیر مسلم کا بورڈ آگے لگا ہوا ہے بورڈ اور پھر وہ حد کراس کر کے پار اتر کر وہ غیر مسلموں کے نام لگے. لیکن ہر تدبیر کا خدا نے ہمیشہ اور نتیجہ نکالا. اور 74 کے بعد اتنی تیز رفتاری پیدا ہو گئی تبلیغ میں کہ ان کی عقلیں گم ہو گئی. سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. جتنی بڑی دیوار بناتے ہیں اتنی بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر لوگ پار اترنے شروع ہو جاتے ہیں. جتنا قریب المنظر بورڈ آویزہ کرتے ہیں اتنے ہی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہی واقعہ تھا. یہ گواہی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس حق میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% درست بات. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری ہر تدبیر الٹ ہو گئی, ہر تدبیر ناکام ہو گئی. اس لیے اب آگے بڑھو اور روکے فری کرو. لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خدا ہر روک کو توڑنا جانتا ہے. جتنی روکیں تم کھڑی کرو گے اتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور ایکسیڈنٹ میں لوگ جاؤ گے. اور یہی ہو کر رہے اب نمازوں سے روکنے کی طرف انہوں نے توجہ کی. اس قدر ایک طوفان آ گیا ہے روحانیت کا کہ آپ تصور بھی کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے خط لکھتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں ہم اپنے آنسوؤں سے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں ایک نئی روحانیت عطا ہو. ہم تہجدوں میں اٹھنے لگے, ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل گئی. اس جواب کو کون مار سکتا ہے جس کے مقابلے پر ہر تدبیر خدا نے اٹھا دی. عبادتوں پر حملہ کیا تو جن بچوں کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتے. آج وہ تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں اور خدا کے جنون کے لیے آزاری کرتے ہیں اور نمازوں پر لطف حاصل ہونا حاصل ہو گیا ہے. تو یہ تو بہرحال خدا کی ایک ایسی تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتا. ساری کائنات بالکل زور لگا لے اس تقدیر کو نہیں بدل سکے. جتنی یہ مخالفتوں میں زیادہ بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر اس سمت میں برکت دے گا جس سمت میں یہ روکنے کی کوشش کرے. اس لیے مبارک ہو آپ کہ ان کے ارادے بہت بند ہیں, کیونکہ خدا کے ارادے بہت ہی نیک ہیں ہمارے ہاتھ. ہر بند ارادے کو توڑ دیا جائے گا اور الٹ نتیجے پیدا کیے. لیکن ایک یہ بات بھی ہے کہ جب خدا کی تقدیر کی ہوا چلتی ہے تو ہماری تقدیروں کو بھی تو اس کے سمت میں چلنا چاہیے, اسی طرف قدم اٹھانے چاہیے. یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ خوشگوار ہوائیں چلیں تو کشتی والے اپنے بازوان لگے وہ تو کھول دیتے ہیں بازوان. اور اسی کا نام تدبیر ہے. خدا کی تدبیر کے رخ پر قوموں کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے. اس وقت تو بعض اوقات چپوں بھی لگانے لگتے ہیں ساتھ کہ پھر کبھی ایسی اچھی ہوا ملے یا نہ ملے, اس لیے اپنے دستے بازو کی کوشش کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. آج وہی وقت ہے جماعت کا. اس لیے ہر تدبیر کے مقابل پر ہم بھی ایک خدا کی تدبیر کے تابع اس کی ہواؤں پر کے رخ پر چلنے والی تدبیر کو ظاہر کریں. اور یہی جماعت کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے اور یہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہو کر رہے گا. چنانچہ اس ضمن میں ایک 7 نکات کا پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے. تبلیغ کو روکنے کی انہوں نے کوشش, عبادت کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تمام دنیا میں ہر احمدی اپنے عبادت کے معیار کو بلند کرتا ہے, یعنی اپنے اس کو اس کے معیار کو ایسا بلند کرے کہ خدا کے حضور بہت زیادہ جھک جائے, اس کی روح سجدہ ریز رہے خدا کے حضور, اور وہ اپنی زندگی کو عبادت میں ملا جلا دے ایسے گویا کہ اس کی زندگی عبادت بن گئی. عبادت والوں کو خدا کبھی ضائع نہیں کیا کرتا اور عبادت سے روکنے والوں کو کبھی خدا نے پنپنے نہیں دیا. سب سے زیادہ قوی ہتھیار عبادت ہے ایک روحانی جماعت کے ہاتھ. یہ دعائیں وغیرہ یہ سارے عبادت کا حصہ ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم عبادت سے روکیں گے تو ہم عبادت میں پہلے سے بڑھ جائیں گے. یہی جواب ہونا چاہیے. اسے لوگ پوچھتے ہیں ان کی سی آئی ڈی چل رہی ہے ہر جگہ لوگ ٹوہیں لے کر گر رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے. کہ ہمارا رد عمل تو وہی ہوگا جو الہی جماعتوں پر ہوا کرتا ہے. جس سمت میں تم روکے ڈالو گے اس سمت کو اس کے مخالف ہمارا رد عمل ہوگا, اللہ کی تقدیر کے مطابق ہمارا رد عمل ہوگا. مذہبی جماعت کا اول رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب خدا سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. بس عبادت سب سے اہم بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی طرف بلاؤ, بتاؤ کیا کرنا ہے. आप अगर अपना वक्त खुदा की खातिर कुर्बान नहीं कर सकते, अगर आप अल्लाह के हुजूर इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, तो बाकी कुर्बानियां बेमानी हैं। क्योंकि यही मकसद है हयात है, इसी की खातिर खुदा ने इंसान और जिन को पैदा करवाया। इसलिए इबादत पहला जवाब है और यही सबसे अहम जरिए तरीकेकार है हमारे हाथ में, यही सबसे बड़ी तदबीर है हमारी। इसलिए इस तदबीर पर जोर माने, जिस हद तक मुमकिन है इबादत की तरफ तवज्जो करें, अपने घरों को जगा दें इबादत के लिए। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, औरतें मर्द, सारे इबादत गुजार तो आगे बदले बन जाए। दूसरा, हमें तबलीग से रोका जा रहा है। इसलिए जाहिर बात है कि उलट रद्दे अमल हो, रद्दे अमल तो कहते ही वो है इस बात को है कि जिस तरफ कोई चीज जिस तरफ से रोके उसके मुखालिफ एक कुवत पैदा हो जाए, और यही जिंदगी की निशानी है। इसलिए हम तो जिंदा कौन है अल्लाह के बदले, हमें तो जिस सिमत में तुम रोकोगे उस सिमत में आगे बढ़ेंगे अपने रब के फजल के साथ और उसकी उसकी नुसरत के साथ साथ। इसलिए तबलीग को पहले से कई गुना ज्यादा तेज कर दें। मुझे इल्म है कि पहले से बहुत ज्यादा तादाद में लोग तबलीग में मसरूफ हैं, कई नौजवान भी हैं हमारे यहाँ इस वक्त इस जुमले में भी बैठे हुए हैं। एक हिंदू से मुसलमान होने वाले नौजवान जिनको अगर नौजवानों ने तबलीग की, ईसाइयों से भी इनफरादी तब्दील के नतीजे में मुसलमान हो रहे हैं, कादियान से खबरें आ रही हैं, सारे माहौल में हैरत अंगेज तब्दीली पैदा हो रही है। हिंदुस्तान के बाद इलाकों में ऐसी तब्दीली पैदा हो रही है कि जहां पार्टीशन से लेकर अब तक 1500 एक जगह यहूदियों की तादाद थी, अब पिछले चंद महीनों में वो 2500 नए यहूदी शामिल हो चुके हैं, और सारे पंजाब में एक तब्दीली वाक़ हो रही है। इसलिए कि उन्होंने इंफरादी तब्दील पर जोर दिया और अल्लाह तआला के फजल से उनकी कोशिशों से बहुत ही ज्यादा गैर मामूली तौर पर फल नसीब हुए। तो हर जगह, हर मंजिल में, हर तबका फिक्र में तबलीग को तेज करना है और इंफरादी तब्दील पर जोर देना है। और हर एमपी यह कर ले कि अब मैंने अगर पहले एक बनाना था तो अब 5 बनाऊ, और अगर और जोर डालेंगे कि तबलीग बंद करनी है तो फिर मैं 10 बना के दिखाऊंगा। और अल्लाह के फजल से जब आप खुदा की खातिर ये ऐद करेंगे तो खुदा पूरा करने की तौफीक से अता फरमाएगा। और इसमें हर तबका के एमपी को शामिल होना जरूरी है। हमारे अंदर कोई चौधरियों का तबका नहीं है वो समझे कि हम क्योंकि बड़े लोग हैं इसलिए हम तबलीग नहीं कर सकते, हम अपने तबके में शर्माते हैं तबलीग करने से, तो दरमियाने लोगों का काम है। अगर ये दरमियाने लोगों का काम है तो दरमियानों को खुदा बड़ा करेगा और उनको छोटा कर देगा जो अपनी बड़ाई की वजह से तबलीग से बात करते हैं। खुदा की खातिर तबलीग से शर्मा, कौन है जो खुदा के हुजूर बड़ा हो सकता है, वही जो खुदा के हुजूर गिरना जानता हो। इसलिए हरगिज कोई ख्याल नहीं करना कि मैं किस तबके से ताल्लुक रखता हूं, लोग क्या कहेंगे, ये सियासतदान था इतना बड़ा साइंसदान था, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट था, इसको क्या हो गया है कि अपने दोस्तों ने तबलीग शुरू कर दी। अच्छे भले हमारे ताल्लुकात, अच्छे भले हमारे मरासिम, इसका मतलब अपनी जगह मेरा अपनी जगह, तबलीग तो कभी नहीं किसने की थी पहले। इस शर्म को तोड़ना है, ये झूठी शर्म है और अहमदियत की राह में रोक बनी हुई थी। इसलिए जब दुश्मन ने ललकारा है तो गौर करें कि क्या क्या नकाइज है आपके, उन नकाइज को दूर करें। लिटरेचर की इशात पर पाबंदी है। मैंने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और रहम और उसकी तौफीक के साथ सारी दुनिया में इशात लिटरेचर के काम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे, इतना कि इसे संभाला ना जाए। जितनी मर्जी दुनिया की दौलतें इनके पसे पुष्ट पे हूं, मैं जानता हूं कि किस किस्म का लिटरेचर ये शाया करना चाहते हैं और कर रहे हैं और कहां से पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे गरीबाना पैसे में जो खुदा ने बरकत देनी है उसके साथ दुनिया के पैसे का मुकाबला ही नहीं हो सकता। उस पैसे में तो जलने की सरिश्त शामिल है, इसलिए वो पैसा तो खाक हो जाएगा जलकर। जमात अहमदिया का पैसा तो आंसुओं से बनता है, ये तो जल ही नहीं सकता दुनिया की ताकतों का मुकाबला। इसलिए जमात के पैसे में बहुत बरकत मिल होगी इंशाअल्लाह। तमाम दुनिया में तबलीग की कुतुब का इशात लिटरेचर का एक बहुत जबरदस्त मंसूबा है, इसको इंशाअल्लाह ताला हज़रत तौफीक आज सच तक बोलूंगा और जहां तक खुदा तौफीक अता फरमाएगा उस पर अमल दराम किया जाए। लिटरेचर की इशारत में नई जुबानों को शामिल करना है और इस जरिए से कसरत के साथ ऐसे ममालिक में दाखिल होना है जहां अभी तक अहमदियत दाखिल नहीं हुई, ऐसी कौमों में दाखिल होना है जहां तक अभी तक अहमदियत दाखिल नहीं हुई, ऐसे तबकात में दाखिल होना है जहां अभी तक अहमदियत दाखिल नहीं हुई। और बहुत से जजीरे बने हुए हैं, बहुत से खला हैं, कई किस्म के लोग हैं, कई किस्म की बोलियां बोलने वाले हैं, कई किस्म के तबकात फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हैं, इतने बड़े बड़े खला हैं जिन तक हम अभी इसलिए नहीं पहुंच सकते कि हमारे पास लिटरेचर नहीं है। तो ना सिर्फ ये कि हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की कुदरत और मौजूद लिटरेचर को ज्यादा शाया करना है बल्कि नई जुबानों में लिटरेचर पैदा करना है। लिहाजा तर्जमा करने वालों की जरूरत पेश आएगी, तर्जमा करने वालों को अपने आप को खुदा के अंदर पेश करना पड़ेगा और कसरत से ऐसे रजाकार चाहिए होंगे जो दिन रात इस काम में मदद करें। मसलन हमारे यहाँ एक गुजराती जानने वाला खानदान है, उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया और लिखा एक खत चंद दिन हुए कि गुजराती जुबान में बहुत बड़ा खला है, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है और गुजराती लोगों में नेकी भी है, अहमदियत की मुखालफत नेकी की वजह से करते हैं अपनी तरफ से और उनको कुछ इलम नहीं कि जहां पहन दिया गया। चुनाचे बसा औकात ऐसा हुआ है कि जब उनको इल्म हुआ, जो लखू खा रुपया दिया करते थे जमात की मुखालफत में, जब उनको इल्म हुआ कि किस तमाश के लोगों को दे रहे हैं और कैसे लोग हैं जिनकी मुखालफत में दे रहे हैं, तो वादा कर और उन्होंने हाथ रोक लिया। तो उनके अंदर एक सादगी भी है, एक बुनियादी शराफत मौजूद है, इसलिए उस तबके से तबके को जरूर हमें मुखातिब करना चाहिए और जो लोग गुजराती जानते हैं उनको पेश करना चाहिए कि हम गुजराती में तैयार हैं लिटरेचर की तर्जुमा कराने के लिए। इसी तरह फ्रेंच में जो पहले भी हैं मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इटैलियन तकरीबन खाली पड़ी है, स्पेनिश पे अल्लाह तआला ने आदमी दे दिए हैं लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। इसी तरह पोलिश है, चेकोस्लोवाकियन है, इसी तरह यूगोस्लाव की कई जुबानें हैं, अल्बानियन है, सर्वोस्लाविक इलाकी है जुबान वो है, रशियन जुबान में बहुत बड़ा खला है, हंगेरियन जुबान है, बहुत सारी जुबानें हैं जिनमें तकरीबन खला है पूरी तंजमात के लिटरेचर का। उसके लिए इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी और लिटरेचर की इशात के साथ समी और बसरी जराए के मुतालिक एक अलग प्रोग्राम है। चुनाचे इस सिलसिले में मेरी बाद गैर मुल्कियों से बात हुई है और वो इस बात पर तैयार हैं कि अगर अंग्रेजी में उनको हम कैसेट्स तैयार कर दें तो वो अपनी जुबान में कुछ उजरत पर, और बाद वैसे ही तैयार थे शौकिया कि हम इस खिदमत के लिए तैयार हैं, अपनी जुबान में उसका तर्जमा करेंगे और फिर अच्छी तरह भरपूर आवाज़ के साथ उसको भर देंगे। तो बकसरत ये काम फैलाया जा सकता है अल्लाह ताला की फजल के साथ। लिटरेचर की तकसीम में भी बात दिक्कतें होती हैं, लिटरेचर की तबाद में भी बात दिक्कतें होती हैं और ज़्यादा रुपया फंसाना पड़ता है, लेकिन ऑडियो वीडियो यानी सनी और बसरी जराए को अगर हम इस्तेमाल करें तो फौरी काम शुरू हो सकता है और थोड़े खर्च से। और आजकल जमाना भी ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता तबीयतें नजर को नरमी का आदि बना रही हैं, यानी आसानी पैदा कर रही हैं नजर के लिए, बैठ कर पैसिवली वो एक नज़ारा देख लें और खुद खुद कानों में आवाज आ रही है, वो इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से कि मेहनत से तवज्जो से पढ़े, इसमें कुछ खराबियां भी हैं, बदकिस्मती भी है इस दौर में, लेकिन फायदे भी कुछ हैं। तो हमें दोनों तरह के मिजाज के लोगों को अहमदियत और इस्लाम की तरफ तवज्जो करना है, इसलिए ये एक अलग स्कीम चलेगी। साथ कुरान करीम की इशारत के काम को तेज करना है और नई जुबानों में अब इसको शाया करना है। इस वक्त खुदा के फजल से फ्रांसीसी का काम तकरीबन अब मुकम्मल है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक महीने या दो महीने में, जैसा कि आफ्ताब साहब अफ्तार खान जिनके स्कूल ये काम है वो मुझे तसली दिलाते हैं, महीने या दो महीने तक इंशाल्लाह प्रेस में चला जाएगा। इटालियन के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि तर्जमा और उसकी तस्वीर और दोहराई वगैरह वो सारा अपने खर्च पर करेंगे। चुनाचे उनकी तरफ से उनकी बेगम ने परसों खुशखबरी, तीन दिन उन्होंने खुशखबरी दी थी कि आधा काम मुकम्मल, आधा काम हो चुका है। इसी तरह और जमा रूसी है, रूसी में पुराने दिन का तर्जमा मौजूद तो है लेकिन हमें अभी तसल्ली नहीं कि वो बयान ही कुरान के मुताबिक भी है कि नहीं। इसलिए कुछ रूसी जानने वाले स्कॉलर्स की जरूरत है, कुछ को हम तैयार कर रहे हैं। वो तो ऐसे हैं अल्लाह के फजल से जो जामिया से फारिग तहसील हैं, दीन का इल्म भी खूब जानते हैं, और अगर वो रूसी जुबान सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह तसल्ली होगी कि इस जो हमारा तर्जमा है कुरान के मुताबिक है। मगर और भी अगर दुनिया में कहीं रूसी जुबान के अहमदी माहरीन हों, जैसा कि हिंदुस्तान में मुझे इल्म है कि एक हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ ठंडे हो गए हैं खिदमत दीन में, तो बहरहाल जिसके कान में मेरी आवाज पड़े वो रूसी जुबान में मदद कर सकता हो उसको अपना नाम पेश करना चाहिए। इन अगराज को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, और एक जगह नहीं कई जगह, कि जिस पर जिन जिन मुख्तलिफ मुल्कों में हम ऐसी तामीरात करें, ऐसे बड़े बड़े मिशन कायम करें जिनमें इन सारी चीजों के लिए सामान मुहैया हो, और फिर मुख्तलिफ मुल्कों के सुपुर्द मुख्तलिफ काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े काम है, ये इंग्लिस्तान के बस की बात ही नहीं है, या जर्मनी के बस की, या सिर्फ अमरीका के बस की, तमाम दुनिया में ऐसे बड़े बड़े मराकज कायम करने पड़ेंगे जिनके स्पुर्द कर दिया जाएगा कि इस काम का बीड़ा आप उठा लें, उस काम का फला मिशन उठा लें, उस काम का फला मिशन उठा लें। इस गरज से अमरीका में पहले से मेरी स्कीम ये थी कि 5 बड़े मराकज कायम किए जाए। उसके लिए अल्लाह ताला के फजल से जमात अमरीका ने बहुत वसत फर्दी से कुर्बानी का मुजाहरा किया है, और बात लगा तो हैरत अंगेज कुर्बानी का मुजाहरा हुआ है कि इंसान की रूह वश करने लगती है। अपनी सारी उम्र की कमाइयां बाद लोगों ने पेश कर दी है बड़े जोश और जोश के साथ, अपने मकान छोड़ दिए, दूसरे काम छोड़ दिए और इस तरह तवज्जो की, लेकिन अभी एक बड़ा तबका वहां भी मौजूद है जो अपने मेयार और तौफीक के मुताबिक कभी सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल मुझे शेख मुबारकम साहब ने जायजा लेने के बाद तसल्ली दिलाई है कि इस वक्त तक हमें तसल्ली है कि इंशाल्लाह ताला अमरीका खुद इस बोझ को उठा लेगा और काम पीछे नहीं रहेंगे पैसे की कमी की वजह से। चुनाचे 3 मिशन इस वक्त तक वहाँ नए प्रोग्राम के मुताबिक लिए जा चुके हैं, और उसी जमीन खरीदी जा चुकी है, एक जगह इमारत खरीदी गई है, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द वहाँ आगे काम को बढ़ा दिया जाएगा। 2 नए मराकज यूरोप के लिए बनाने का प्रोग्राम है, एक इंग्लिस्तान में और एक जर्मनी में। इंग्लिस्तान को यूरोप में एक खास हैसियत हासिल है, इसलिए इंग्लिस्तान में बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन चाहिए जो इस जिस जरूरत को ये मिशन पूरा नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो आप ईद की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, जुमे की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, रोज की शाम की मजलिस के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, तो ये मस्जिद तो काफी नहीं है उसके लिए। फिर दफातर हैं, कई किस्म की जरूरियात हैं जो हिंदुस्तान में आएंगी, इसलिए एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मरकज कायम करना है इंशाल्लाह, उसके लिए कमेटी उठा दी गई है, और एक जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की जमात बहुत मुखलिस और तब्दील में दिन रात मुनहमिक है, बहुत बेचारे गरीब मजदूर पेशा लोग हैं, इलम भी ज्यादा नहीं, और पाकिस्तान से नहत गरीब सोसाइटी से अक्सर ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा अल्लाह ने उनको इखलास बख्शा है कि जब चंदे की जरूरत पड़ी थी तो जर्मनी का मिशन बहुत से दूसरे मिशनों के लिए कफील बन गया था, और हैरत अंगेज कुर्बानी के मुजाहरे बने। अब जब तबलीग का कहा तो लाइमी के बावजूद उन्होंने कैसेट्स पकड़ी और टेप्स उठाई और हर तरफ तबलीग शुरू कर दी, और खुदा के फजल से एक इंकलाब आ रहा है जर्मनी में तब्दीली मुख्तलिफ तरह से। तो जर्मनी की जमात का हक है कि उसे बहुत वसत दी जाए, इसलिए एक मिशन वहां बनाना है। इसके लिए अल्लाह ताला रुपए अपने फल से मुहैया करेगा। मैंने इंशाल्लाह पहल की है, 10,000 पाउंड मैं इस काम के लिए पेश कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक हमशीरा है हमारी सईदा, जो वालू लतीफ़ साहब एडवोकेट हैं। आपका नाम है लतीफ़ एडवोकेट है अब्दुल लतीफ़, उनकी बेगम है, मुझे इलम नहीं कहा, सईदा बेगम नाम है। उन्होंने इस इल्म से पहले ही कि मैं क्या स्कीम पेश करने वाला हूँ, 6,100 पाउंड जो 1,00,000 रुपए के बराबर रकम बनती है, आज खुद मुझे भिजवा दिए चेक की शक्ल में और कहा कि इसको जमात की नई जरूरियात सामने आ रही हैं, जरूर पैदा हूँ, इसलिए मैं उनके लिए ये पेश करती हूँ। अल्लाह ताला उनको भी जजा दे, इंशाल्लाह ताला रुपया तो आएगा अल्लाह के तरफ से, कभी हुआ ही नहीं कि जरूरत पड़ी हो और रुपया मुहैया ना हो गया। तो इस तरह मैं ये तहरीक का आगाज करता हूँ और ये यूरोपियन ममालिक के लिए है, यानी यूरोपियन ममालिक में बसने वाले अहमदी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलहाल हर मुल्क में नहीं बल्कि इन दो ममालिक में मराकज कायम किए जाएंगे जो सारे यूरोप के लिए उनके मुश्तरक कामों को सर अंजाम देंगे। बहरहाल जैसा कि मैंने बयान किया था, हमने तो वही करना है जिस खातर खुदा ने हमें पैदा फरमाया है और हमेशा यही करते चले आए हैं, हमारे काम तो रुकने नहीं। और जितनी बड़ी रोकें दुश्मन डालता चला जाता है, हमने हमेशा यही देखा है कि खुदा का फजल उतने ही ज्यादा कुवत पैदा करता चला जा रहा है हमारी रविश में और पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए इन बादलों से डरे नहीं। हजरत दूसरे मऊद ने बहुत ही खूब फरमाया था कि तुम देखोगे कि इन्हीं में से कतरात मोहब्बत करते बादल आफात और मसाइब के छाते हैं अगर तो छाने। इसलिए बिजलियां हैं तो किसी और के लिए होंगी, हमारे लिए तो रहमत की बारिश ही है। इसलिए हर किसी को खौफ नहीं करना और पहले से ज्यादा हिम्मत और तवक्कुल के साथ खुदा की राह में आगे कदम बढ़ाना है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का यह शेर हमेशा पूरा होता रहेगा और एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि इस शेर की राह में कोई दिन खड़ा हो सके, एक रात ऐसी नहीं आ सकती जो इस शेर के मजमून पर अंधेरा डाल सके। लवायमा बनाए हर सईद का हक विदाए फतह नुमाया निशान माबाश, लवायमा बनाए हर सईद का हक कि ये मेरा हमारा झंडा होगा जो हर सईद फितरत के लिए बनाकर मुझे बनने वाला है। और कोई झंडा नहीं है दुनिया में, ना अमरीका का झंडा, ना रूस का झंडा, ना चीन का झंडा, ना जापान का झंडा। अगर सही फितरतों को किसी झंडे के नीचे पनाह मिलनी है तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे पनाह मिलनी है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे आप ही की गुलामी में दोबारा खड़ा किया। तो लिवाए मापन है हर सही का निदाए फतह नुमाया निशान माबाश, हमारा नुमाया निशान तो ये है कि फतह नुमाया की आवाज जब उठेगी हमारे सिर से, जब ये ऐलान बुलंद होगा, ये नारा बुलंद होगा कि नुमाया फतह नसीब, तो याद रखना हमेशा हमारी सिमत से आवाज उठा करेगी, किसी और सिमत को आवाज उठाने की जरूरत नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله،
آج ایک ضروری مصروفیت کی وجہ سے نماز عصر بھی جمعے کے ساتھ جمع کروائی جائے گی, اس لیے جمعے کے بعد نماز عصر کے لیے صفیں درست کر دیں. Oh,